गीता की चर्चा करेंगे। मेरे साथ बोलिए,
सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असत्तम सर्वभृत्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असत्तम सर्वभृत्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच।
श्री कृष्ण अर्जुन को जिस ज्ञेय की, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की बात करते हैं कि जो जानने लायक है, वो जानने लायक क्या चीज है? वो जो परम तत्व है, दैट सुप्रीम बीइंग विच इज बियॉन्ड द सेंसेस, इट येट शाइन्स थ्रू एवरी सेंस परसेप्शन, इट इज बाउंड टू नथिंग बट येट सस्टेन्स एवरीथिंग, इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल द मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर, स्टिल इट इज द मास्टर ऑफ ऑल द मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर। सज्जनों देवियों, पिछली बार हम इसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे थे। जब भी आप कोई ऐसी चीज की चर्चा करें जिसको आपने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, जिसको आप देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, चख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, तो इसको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ईश्वर को अव्याख्य कहते, अनडिस्क्राइबेबल कहते हैं, जिसको बताना मुश्किल है, क्योंकि बताएंगे उन्हीं चीजों को बताया जा सकता है जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको सुन सकते हो, या आप चख सकते हो या सुन सकते हो। अगर कोई भी इंद्रिय, कोई भी सेंस आप उसको फील नहीं कर सकता, फिर उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो इसलिए लैंग्वेज की अपनी एक लिमिटेशन है, भाषा की अपनी एक सीमा है। तो मजबूरन फिर जो लॉजिक है, जो कॉमन लॉजिक है कि दो अपोजिट चीजें साथ में नहीं रह सकते, फिर वो लॉजिक टूटता है जब आप अनडिस्क्राइबेबल थिंग को डिस्क्राइब करते हैं। लॉजिक, सिंपल लॉजिक ये है, जो वेस्टर्न लॉजिक है, कि दो अपोजिट चीज एक ही जगह, एक ही स्थान पर, एक ही प्लेस पर, एक ही टाइम पर नहीं हो सकते। अगर आपके तो दिन हो तो वो रात नहीं है, वहां रात नहीं हो सकती, अंधेरा नहीं हो सकता। अगर अंधेरा है तो वो दिन नहीं हो सकता। अगर आपके तो गर्म है तो वो उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर प्लेस पर ठंडापन नहीं हो सकता। अगर वो ठंडा है तो वो गर्म नहीं हो सकता। दो अपोजिट चीज एक साथ नहीं हो सकते। पर हमारे सारे शास्त्रों में यही दिखता है, जब भी हम आत्मा की चर्चा करते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, तो वहां हमेशा कंट्राडिक्टरी वर्ड्स को ही यूज करते हुए देखते हैं। दो अलग अलग दिखने वाले शब्दों को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, और कोई उपाय नहीं, कि लैंग्वेज की अपनी एक मजबूरी है, एक लिमिटेशन है। जब आप इसको डिस्क्राइब करते हो तो दोनों चीजें बताना पड़ता है। वो सभी गुणों को आभासित करने वाला है। अगर वो नहीं होता, हमारे इंद्रियां प्रकाशक नहीं होते। इंद्रियों का प्रकाशक का मतलब होता है जो शाइन करते हैं या जो दूसरों को दिखाते हैं। अगर आपकी आंख नहीं होती तो सूरज है नहीं है आप कभी नहीं जान पाते। पत्तों का रंग हरा होता है आप कभी नहीं जान पाते। फूल कितने अलग अलग रंग के होते नहीं जान पाते। किसी भी रियलिटी को आप नहीं जान पाते जो देखने लायक है, अगर आपके पास आंख नहीं है। इसीलिए आंख आपके लिए प्रकाशक है, आपको प्रकाशित करता है। सूरज हो, दिया हो, लाइट हो, वो बेकार हो जाएंगे अगर आपके पास आंख नहीं है। कितने भी मधुर संगीत चल रहा हो, कितना भी अच्छा सुनने वाले म्यूजिक चलता हो, पर अगर आपके कान ठीक नहीं है, आपकी सुनने की शक्ति नहीं है, तो आप कुछ नहीं एंजॉय कर सकते, आप कुछ नहीं जान सकते। पर कान सुनने लायक है, आंख देखने लायक है, जीभ चखने लायक है, क्योंकि और कोई है जो इनको पावर देता है। ये बल्ब जलते इसलिए नहीं कि बल्ब में जलने की ताकत है, कोई पावर उनको देता है जिनके कारण वो जलते हैं, जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हो। वो इलेक्ट्रिसिटी दिखते नहीं है, आप इसको देख नहीं सकते हो, आप इसको जान नहीं सकते हो, आप सिर्फ इन्फर कर सकते हो, आप इन्फरेंस के द्वारा जान सकते हो। अगर आपका बल्ब जलता है आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी है, अगर नहीं जलता है तो वो चली गई है, पावर कट हो चुका है। इंद्रियां अगर काम करती है इसका मतलब है कि अंदर कुछ है जो उनको पावर देता है, और वो इसीलिए वो इंद्रियों का भी प्रकाशक है। अगर वो नहीं होता तो फिर इंद्रियां होते हुए भी वो फिर प्रकाश नहीं करते। एक डेड बॉडी कितना भी सुंदर उसके कान हो, आंख हो, नाक हो, जीव हो, कितना भी बढ़िया हो, कितना यंग लड़का या लड़की हो, कितना स्ट्रांग हो, पर अगर वो डेड बॉडी है, मर चुका है, उस बॉडी में ना वो आंख देखने लायक है ना कान सुनने लायक है, क्योंकि उसकी जो पावर है वो कट हो चुका है, बीच में से कट चुका है। इसीलिए ये तो हमारे अंदर की इंद्रियों को जो 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 शक्ति देता है, जो पावर देता है, वो हमारी आत्मा है। पर ये सारे संसार में जो एक इटर्नल रूल है, जो एक शाश्वत नियम है, वो शाश्वत नियम जिसके आधार पर आपकी टेक्नोलॉजी टिकी हुई है, जिसके आधार पर आपके मॉडर्न साइंस टिका हुआ है, अगर वो शाश्वत नियम इटर्नल रूल फ्लेक्सिबल होते, चेंजेबल होते, अगर वो कोई पक्का रूल नहीं होता, तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि अमुक मैटर की, अमुक चीज की ये क्वालिटी है, ये उसका नेचर है, तो फिर आप उस बेस पर आप टेक्नोलॉजी पैदा करते हैं, साइंस पैदा करते हैं। ये जो शाश्वत नियम है, ये सारा संसार लटका हुआ है आकाश में, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सब अलग लटके हुए हैं, पर उसके अंदर एक रूल काम करता है इंटरडिपेंडेंसी की। हमें लगता है कि हम धरती पर हैं, पर धरती तो गोल है, वो तो घूमता रहता है, आप गिरते आकाश में छिटक के पड़ते, ऐसा नहीं होता है। कोई रूल है, कोई नियम है, और वो नियम एक दूसरे को बांधता है, जिसको हमारे शास्त्र में रितम कहते हैं, या आप इसको इटर्नल रूल कह सकते हैं, जिसके कारण सूरज में प्रकाश की शक्ति है, पानी में नीचे बहने की शक्ति है, पेड़ फल देने की शक्ति है, आपके मनुष्य इंसान के इंसान होने की शक्ति है, इंसान कभी कुत्ता नहीं बन पाता है, कुत्ता कभी पेड़ की तरह बिहेव नहीं कर सकता, पेड़ कभी सूरज की तरह बिहेव नहीं कर सकता, सबकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं फिक्स है, और कोई फिक्स करने वाला तो कोई मैटर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैटर तो जड़ होता है। इसीलिए वो तो सर्वेंद्रिय विवर्जित है, उसके पास कोई सेंस नहीं है, पर जितने भी इंद्रियां काम करती हैं वो उनको काम कराने लायक वही बनाती है। वो असक्त है, वो किसी के साथ अटैच्ड नहीं है, वो किसी के साथ बाउंड नहीं है, और आप हम हर चीज में बंधे हुए हैं। अपनी मर्जी जो हम कहते हैं, हम अपनी मर्जी से करते हैं, आप अपने लाइफ में कुछ भी अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते, कितने भी आपको फ्रीडम दिया जाए, आप बाउंड है हर चीज के साथ। आपकी फ्रीडम, आपकी इंडिपेंडेंसी, अगर आपको लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, या कोई भी सोचता है, खास करके हमारे टीन एज के बच्चे सोचते हैं, वो इंडिपेंडेंसी भी रिलेटिव होता है, वो किसी ना किसी से बंधा हुआ होता है। आप उस जैसे वो गाय के गले में रस्सी बंधी होती है, भारत में गांव में जिनके यहां कम गाय बैलें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गाय चरने के लिए जो जमीन होता है उसको गोचर बोलते हैं, तो वहां लंबी सी रस्सी कम से कम 100 मीटर 150 मीटर की रस्सी उसके गले में बांध के किसी खूंटे में बांध देते हैं और वो गाय घूम घूम करके घास खाती रहती है। और क्योंकि 100 150 मीटर तक वो घूम सकता है चल सकता है, तो गाय को ज्यादा समय ये फीलिंग होती है कि मैं तो फ्री हूं, मैं कहीं भी जा सकती हूं। पर जैसे ही वो रस्सी की लिमिटेशन 100 मीटर से आगे गाय दौड़ने की कोशिश करती है तो गले में खिंचाव होता है, वो समझ जाता है कि मेरी फ्रीडम में एक लिमिटेशन है, वो इतने में ही मैं घूम सकता हूं। इंसान अपने आप को कितना भी बड़ा समझे, पावरफुल समझे, कितना भी अपने आप को आजाद समझे, पर उसकी आजादी में एक लिमिटेशन है, उसकी पावर में भी एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता। देखिए ये धरती कितना खूबसूरत है, लाखों सालों की ये धरती है, ये पृथ्वी है, ग्रह, ये प्लैनेट है, लाखों सालों की है। और हम इंसान अपने इंडिपेंडेंसी को यूज करके, अपने इंटेलेक्ट से हमने दुनिया में नए नए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पैदा किया, बनाया, उसको देख करके कुछ सिर्फ ही विद्वान लोग चिल्लाने लगे कि अब तो वैज्ञानिक ईश्वर को भी चैलेंज कर देंगे, कर दिया। देखो हमने क्लोनिंग से बच्चा पैदा करना सीख गए, हम तो टेस्ट ट्यूब से भी बच्चा पैदा कर देते हैं, हम तो ये भी कर देते हैं, अब ईश्वर की क्या जरूरत है। 400 साल की साइंटिफिक रिवोल्यूशन में ये धरती बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका है। सिर्फ 400 साल की इंसान की इंडिपेंडेंसी की जो फीलिंग है, उसने इस धरती को जो और लाखों सालों तक जिंदा रहना था उसको हमने 400 साल में इतना बर्बाद कर दिया। जैसे बच्चे को, एक अनपढ़ एक अबोध बच्चे को आप कोई बढ़िया चीज पकड़ा दो, एक दो तीन साल बच्चे को आप अपना सेल फोन पकड़ा दो, वो उसको काट पीट ठोक करके एक घंटे तक खूब एंजॉय करता है, पर उस एंजॉयमेंट के बाद वो सेल फोन काम का नहीं रहता है, वो काट पेट ठोक करके। ये हमारा तथाकथित इंटेलेक्चुअल जो ग्रुप है वो उसी तरह का ठोक पीट के पृथ्वी को एंजॉय करता है, थोड़ी देर के बाद वो पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगा। तभी देखिए दुनिया भर में सारे देश के मुखिया लोग बैठ के क्लाइमेट चेंज पर डिस्कस करते हैं और एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, तुम अपने यहां एसी बनाना बंद करो, तुम वहां अपना गाड़ी चलाना बंद करो। वो कहते हैं अरे तुम 200 साल से भोग भोग करके तुम्हारे लोगों ने भोगा, अब हम तो अभी अभी पैसा कमाने लगे, हमारे लोग अभी गाड़ी चढ़ने लगे, एसी यूज करने लगे, अब कहते हो कि डेवलपिंग कंट्री को तुम बंद करो। पहले तुम बंद करो, कोई बंद करने वाला नहीं है, सबको एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, सबको लंबी लंबी चीजें चाहिए, धरती बर्बाद होगी। तब जब हम, जब तक हम साइकिल पर दोबारा वापस ना आ जाए, जब तक हम ढेकी कोट करके धान खाना शुरू न करते, हमारी इंडिपेंडेंसी की अपनी एक लिमिटेशन है। अब तो साइंटिस्ट बोलने लगे हैं कि ये जो रियलिटी को ढूंढने की जो 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 एक प्रोसेस शुरू हुआ है साइंस की जगत में, कि हर उस चीज को ढूंढना है, जानना है, जानना है, कहते हैं अगर यही स्पीड रहा और यही माइंडसेट रहा हर चीज को जानना है, वो धरती पता नहीं कब 50-100 साल के अंदर बर्बाद हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक स्टॉप करना पड़ेगा, एक ब्रेक लगानी पड़ेगी, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उसको वो अननोइंग स्टेट में छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता कब कौन सा विस्फोट होकर हम मर जाएं। तो ईश्वर सबको बनाने वाला, पर उसके पास अपना कोई इंद्रिया नहीं है, क्योंकि वो तो आकार रहित है। आकार रहित इसीलिए नहीं है कि मैं मानता हूं या आप मानते हैं, सवाल मानने की नहीं है। कोई भी चीज जो ऑल फॉरवर्डिंग होगा, सर्वव्यापक होगा, उसका पहला रूल है कि वो शरीर रहित ही होगा। जब भी आपके पास एक ग्रॉस बॉडी होता है आप एक लिमिटेड जगह घेरोगे। अगर आप चाहते हो ज्यादा जगह घेरना तो आपको शटल फॉर्म में जाना पड़ेगा, सूक्ष्म रूप में जाना पड़ेगा। बिजली ज्यादा जगह घेर सकती है, बहुत जल्दी बहुत जगह स्प्रेड हो सकती है, और आप अपने एरिया में कुछ इंच जगह घेर सकते हैं। सब जगह फैलने के लिए आपको शरीर रहित होना जरूरी है। अगर आप मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है तो आप ये मान भी नहीं सकते कि वो कोई शरीर वाला होगा, साकार होगा। आपकी बिलीव क्या हो, फेट क्या हो, कोई रीजनिंग, कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं बनता। अपने आप को खुश करने के लिए आप कितना कहो ईश्वर साकार है, निराकार है, वो निर्गुण भी होता है, सगुण भी होता है। अब मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा होता है, आप ख्याल 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 रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे वो ख्याल फेथ में कन्वर्ट हो जाता है। कोई समझाने आता है तो फिर आजकल तो वो मुझे तो लगता है 18वीं शताब्दी के लोग ज्यादा अच्छे थे हमारे से, क्योंकि पता नहीं हम लोगों का फेथ आजकल इतना कट्टर हो चुका है, किसी को कुछ समझा दो लगता है आपने मेरे फेथ को हर्ट किया तो मैं आपको गोली मार दूंगा, मैं आपको उड़ा दूंगा, मैं आपको देश से बाहर कर दूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। सबके फेथ को हर्ट हो जाता है, पता नहीं इतना उठपटांग फेथ लेकर चलते क्यों हो कि उसको हर्ट भी हो जाता है। वो मैं तो राम का भक्त हूं, आपने राम के खिलाफ बोला तो मुझे हर्ट हो गया। भाई मैं राम को नहीं मानता हूं, आप बोलते हो तो मुझे भी तो हर्ट होता है। वो तेरे हर्ट तुम्हारा हर्ट ही हर्ट है, और हमारा क्या इंसाफ नहीं है। मैं तो अमुक टाइप के भगवान को मानता हूं जो चौथे आसमान पर रहता है, तुम नहीं मानते हो तो तुम मेरे फेथ पर चोट पहुंचाते हो। पता नहीं आदमी पढ़े लिखे हो करके ज्यादा जालिम बनता है, ज्यादा क्रूएल बनता है लगता है, ज्यादा रिजिड, ज्यादा फैनेटिज्म के अंदर पैदा होता है। क्यों? जब आप अपना दिमाग यूज करना बंद कर देते हैं, जब कॉमन सेंस यूज करना बंद कर देते हैं बिलीव के नाम पर, फेथ के नाम पर, तो रिजिडिटी फैनेटिज्म पैदा होता है। वो ईश्वर क्योंकि सर्वव्यापक है इसीलिए उसका कोई इंद्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्वव्यापक है उस किसी के साथ वो अटैच्ड नहीं है, पर सबको पालन करता है। बड़ी मजेदार चीज देखिएगी, आप किसी को $10 भी हेल्प करते हैं जिंदगी भर उसको याद रखते हैं, मतलब यू आर अटैच्ड विद दैट पर्सन, यू आर हेल्पिंग। जिसको आपने हेल्प किया उसको आप जिंदगी भर याद रखते हैं, आप अटैच्ड हो गए। पर आप कितने लोगों को याद रखे हो जिन्होंने आपको हेल्प किया। कभी रोड में आप फंस गए, कहीं छोटी मोटी चीजों में हजारों जगह आपको ऐसे अनजान अनसुने लोग आपको आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। कितने लोगों को हम याद रखते हैं जिंदगी भर में, लिस्ट बनाओ। आपके हमारे जिंदगी में ऐसे हजारों लोग आए होंगे किसी ना किसी स्टेज पर हमें हेल्प करके चले जाते हैं, हमें वो याद नहीं है, पर हमें वो सब कुछ याद है हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, उसके लिए क्या क्या किया है। अटैच्ड हो जाते हैं, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही भूलने को तैयार नहीं है। क्यों? बहुत कुछ करते हैं उनके लिए, इसलिए छोड़ने को तैयार नहीं है। मरने के बेड पर पड़े तब भी बच्चों से चिपके हुए हैं, क्योंकि हमने उनके लिए कुछ किया है। वो हमें याद करते हैं कि नहीं करते? बच्चे को देखकर मरूंगा इसीलिए नहीं कि बच्चे को, क्योंकि किया था इसलिए उसको देखकर मरना है। इंसान किसी के लिए कुछ करे उसको सहज से भूल नहीं पाता है, और जो भूल जाते हैं वो बड़े अच्छे दिल के होते, महात्मा हो जाते हैं। पर ईश्वर ठीक इसका उल्टा है, वो कहते हैं असक्तम, इट्स डिटैच्ड है, किसी से कोई चिपका नहीं है, पर सर्वव्रत सबका पालन करता है, पर किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। तभी तो किसी को भी मार सकता है। ये बड़ी मजेदार बात है कि दुनिया में जितने भी रिलीजन है, जितने भी फेथ हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है कि ईश्वर इज द क्रिएटर एंड द सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स। वो हमें पैदा किया है और वो हमें पालन करता है। किसी भी रिलीजन में सिवाय वैदिक धर्म में या हिंदू धर्म में ईश्वर is not described as the lord of destruction,
ये सिर्फ हमारे यहां है। क्यों? उनको लगता है वो शैतान का काम है, पर ऐसा नहीं है। पैदा होना मरना दो अलग अलग चीजें नहीं है, दे आर ऑल इंटरलिटेड। आप मरेंगे नहीं तो पैदा हो ही नहीं सकते, जो पैदा करेगा वही मरेगा। ईश्वर ब्रह्मा भी है, वही सृष्टि करता है, वही पालन करता है, विष्णु वही संहार करता भी है। संहार तभी करेंगे ना जब आप डिटैच्ड हो। दुनिया में कोई भी ताकत बचा सकता है ना मरने से? कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि पैदा हुआ है तो मरना पड़ेगा। वो इंसान हो, भगवान हो, सूरज हो, चांद हो, नक्षत्र हो, एनीथिंग जो भी हो, निर्गुण अनुगुण भोक्तृ च, उसमें कोई गुण नहीं है। गुण का अर्थ सत्व रज तम, जिससे ये संसार बना है। पर गुण भोक्तृ ये पूरे संसार को पालन करने वाला है। ये संसार जो गुणों से बना है, सत्व रज तमो गुणों से, पर वो खुद गुण रहित है, पर ये संसार का पालन करता है। अगले बार हम ईश्वर के कुछ और गुणों के बारे में चर्चा सुनेंगे कि वो बाहर भी है, अंदर भी है, वो चलता भी है, वो नहीं भी चलता है, वो सुदूर भी है, वो नजदीक भी है। ये सब चीजें हम अगले बार सुनेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्ते।